राम यह प्रवचन परम सदैव स्वामी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा दिनांक 11/12/93 रात 8 बजे कलकत्ता में हुआ।
वराकृति नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
कई भाई बहनों के मन में एक बात जची हुई है कि हम भजन ध्यान करें सत्संग करें तो ये हमारे लिखा हुआ नहीं है। लिखा है वैसे ही होता है, इस वास्ते हमारे ये भाग्य में लिखा नहीं है। सत्संग में नहीं आते वो कहते भाग्य में लिखा नहीं है। भुवन नाम जपते हैं ये लिखा नहीं है। भजन जप करते हैं स्वाध्याय करते हैं शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो कहते लिखा नहीं है। तो ये लिखा हुआ नहीं होता है, ये तो अभी वर्तमान के करने का है। हमारे जीवन में दो चीजें हैं, एक पुराने कर्मों का फल आता है और एक हम नए कर्म करते हैं। जैसे खेती करने वालों के घरों में पहले जन्म का संग्रह था, अनाज रहता है और नई खेती करते हैं उसमें नया अनाज पैदा होता है। तो पिछले कर्मों का संग्रह है वो तो हमारे सबके है जैसा है, अब नया कर्म करते हैं वो नया संग्रह होगा। तो पुराने कर्म है उनका क्या होता है, नए कर्म क्या होता है, इस भेद को थोड़ा ध्यान देकर आप लोग समझें। जो घटना घटती है आपसे आप वो पुराने कर्मों का फल है, और जो हम करते हैं ये करना है ये पुराना फल नहीं है, ये तो नए कर्म है। तो भजन स्मरण करना है ये नया काम है, ये पुराने कर्मों का फल नहीं है। ये तो अभी नया करने का है कि हमारे लिखा नहीं है तो अभी लिखा लो। ये दफ्तर खुला रहता है हरदम, अभी नाम जपो अभी लिखा हो जाएगा। ये कर्मों का फल नहीं है, नया उद्योग है। अब इसमें विचार आता है कि नया उद्योग क्या क्या है, पुराने फल क्या क्या है। तो दो विभाग है, एक प्रारब्ध है एक पुरुषार्थ है। इनमें लोगों में बड़ी उलझन रहती है, मेरे भी रही है। उन संतों की कृपा से शास्त्रों के पढ़ने से संतों से सुनने महात्माओं से सुनने से इसमें संदेह नहीं रहा है। तो आप भी सो आपको संदेह नहीं रहेगा। तो मैंने देखा है कि सुनने से पढ़ने से ये भीतर के संदेह दूर होते हैं। संदेह होता है अधूरे ज्ञान में, कुछ भी ज्ञान नहीं होता तो उस पर संदेह नहीं होता, और पूरा ज्ञान होता तो संदेह रहता नहीं, अधूरी जानकारी में संदेह रहता है, उसको पूरा निश्चय नहीं होता। वो राजसी बुद्धि होती है, क्या ठीक क्या ऐसा है क्या है क्या है, अयथावत प्रजाति, ठीक तरह से नहीं जानता, कुछ जानता कुछ नहीं जानता, वो राजसी बुद्धि होती है। सात्विक बुद्धि में ठीक ठीक जान लेता है, सत असत भय अभय ठीक बे ठीक सार असार जान लेता है। तो ऐसे संदेह रहता है, तो उसमें आपको बताते हैं कि भजन स्मरण करना है, दान पुण्य करना है, त्याग तपस्या करना है, तीर्थ व्रत आदि करना है, ये नया करने कर्म है। पुराने प्रयास से जैसे धन मिलना है, अपने कृष्ण में स्त्री पुत्र आदि का प्राप्त होना है, मान आदर सत्कार होना है, निंदा प्रशंसा आदि होना है, आदर निरादर होना है, ये होना है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये पुराने कर्मों का फल होता है। और नए कर्मों का फल भजन स्मरण करना, पाप करना, पुण्य करना, तीर्थ व्रत आदि करना, संयम करना, ये नया कर्म होते हैं। तो भजन स्मरण करना ये नया कर्म है, ये पुराना कर्म नहीं है। अब इसमें कर्म कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दें। हम जो अभी कर्म कर रहे हैं इसको क्रियमाण कर्म कहते हैं, किया जाता है अभी नया, इसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। और अनेक जन्मों के कर्म जो संचित हुए हैं, पाप और पुण्य का एक संग्रह हमारे पड़ा हुआ है, उस भाग को संचित कर्म कहते हैं, वो खजाना है। संचित कर्म शुभ और अशुभ दोनों तरह के संचित कर्म होते हैं। उस संचित कर्मों में से अभी जो भोगने के लिए जितने कर्म निकाल दिए जाते हैं उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध मानो प्रारंभ हो गया, भोगने के लिए प्रारंभ हो गया, वो भोगने के लिए वो प्रारब्ध कर्म है। नए कर्म करते हैं, पुराना जमा है, और इसमें भोगने के लिए तीन विभाग हुए। जैसे कोई धन कमाता है तो एक दो रोजाना कमाते हैं और कुछ धन खजाने में संग्रह पड़ा हुआ है और कुछ उसमें से जेब खर्च निकाल लिया खर्च करने के लिए। अनाज नया पैदा करते हैं, पुराना पड़ा हुआ है, उसमें से अपने भोजन करने के लिए थोड़ा सा निकाल लिया, जिसकी रोटी बनेगी खाएंगे। तो पुराना पड़ा है उसको संचित कर्म कहते हैं, और नई खेती करते हैं, नया काम करते हैं, उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। और इस जन्म में जो भोगा जाता है कर्म, वो भोगा जाता कर्म वो प्रारब्ध कर्म होता है, जेब खर्चे की तरह। अब है जैसे बाण चलाते हैं तो पीछे तरकश में बाण रहते हैं, वो संचित है। और जो अभी चला चूके हाथ से छूट गया वो प्रारब्ध है, और अभी चला रहे हैं ये क्रियमाण है, अब नहीं चलाएंगे। तो ये तीन विभाग है, संचित विभाग है, प्रारंभ विभाग है, और क्रियमाण कर्म है। ये तीन अलग अलग कर्म है। अब इसमें एक शंका होती है कि हमारे सामने परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति नया कर्म है पुराना है, तो परिस्थिति पुराने कर्म से आती है, परिस्थिति का उपयोग करना है वो नए कर्म है। हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग करें, कैसे करें, वो तो है नया कर्म करना। और परिस्थिति स्वतः आती है वो प्रारब्ध कर्म से आती है, उन प्रारब्ध कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो प्रारब्ध में अच्छे भी आते हैं, मंदे भी आते हैं। हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति बनती है वो पुण्य रूपी प्रारब्ध से बनती है। पहले कर्मों में हम जन्मों में शुभ कर्म किए हैं, उन शुभ कर्मों का फल यहाँ सुखदायी परिस्थिति बनती है। और जो पाप है, अशुभ कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल जो प्राप्त रूप से बना है उसका अभी प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी। जो पाप किया है वो उल्टी हम नहीं चाहते, ऐसी परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है ये कर्मों का फल है। उस परिस्थिति का उपयोग करना ये नया काम है, उसका उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जैसे धन मिला, ये तो प्रारब्ध से मिला, उस धन के द्वारा हम अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा भी काम कर सकते हैं। व्यापार करते हैं तो अच्छी चीजों का व्यापार भी कर सकते हैं, हार है, मांस है, चमड़ा है, इसका व्यापार भी कर सकते हैं। तो वो जो मलिन चीजों का व्यापार करने से पाप लगेगा और शुद्ध चीजों का बर्ताव हो, दूसरों का कल्याण हो, उसमें पुण्य होगा। जैसे हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, चपड़ा है, नील है, जो सींग है, इनका जो व्यापार करता है, इसके सिवाय तम्बाकू है, भांग है, सरस है, मदिरा है, कोकन है, ऐसी नशीली चीजों का, पान पराग है आदि नशीली चीजों का व्यापार करता है तो उसका पाप लगेगा, क्योंकि लोगों की वो मोहित वृत्ति होगी, बेहोशी होगी, व्यसन लग जाएगा, छूट सकेगा नहीं, हमारी वो पान चलेगा, तो ऐसे फंसा देना वो व्यापार पाप करने वाला है। नया कर्म करते हैं हम, पर नया कर्म पाप कर्म होता है, उसका दंड भोगना पड़ेगा। और हम पुस्तकों की बिक्री करते हैं, धार्मिक पुस्तक जिससे कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, जीवों का शंका मिटती है और वृत्तियां अच्छी होती है, उसको शांति मिलती है, भगवान में प्रेम होता है, धर्म में प्रवृत्ति होती है, ऐसी पुस्तकों का प्रचार है, वो प्रचार बड़ा पुण्य करने वाला है, उसका बहुत बड़ा भारी बढ़िया बढ़िया पुण्य होगा। और जो ऐसे सिनेमा है, इनकी पुस्तकें हैं, कई गल्प है, कई उपन्यास है, जिनसे लोगों की प्रवृत्ति खराब होती है, ऐसा सिनेमा है जिनसे मनुष्यों की भोग वृत्ति होती है, चोरी करना आदि का होता है, ऐसी सीखते हैं, ऐसे सिनेमाओं का बड़ा भारी पाप लगता है तो नया बात वो देखते हैं नया है, परंतु उसका आगाड़ी भयंकर फल होगा। मैंने ये देखी है बात, बहुत वर्षों से एक बात हो रही है, वो नई हुई है पर अभी चलती है, हमने देखा है। जैसे बीकानेर में कोलायत है, उनकी कोलायत का मेला होता है, तो मेले में पहले इतनी चोरी नहीं होती थी। मैं बहुत वर्षों में मेले में जाता हूँ, कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ, पर परिचय मेरा 80 वर्षों से मेरा परिचय है, ज्यादा है इससे भी। वो मेला का परिचय तो पहले बड़ी शांति राम में रहता था, फिर उनमें विजेब कतरने वाले ये आदमी पैदा हो गए, तो उनका विचार किया क्या हुआ, तो कहते एक किस्मत सिनेमा निकला, उसका नाम किस्मत है, तो उसमें चोरी सिखाई जाती है, जेब कतरना सिखाया जाता है, डाका डालना, दूसरों को धोखा देना सिखाया जाता है, तो उससे इतनी प्रवृत्ति हो गई, बेचारे गांव के लोग अपना रुपया लेकर आते हैं, भाई वहां पर ऊंट खरीदेंगे और हम आगे चीज अच्छी देंगे, ऐसा आते हैं, वो रुपया जेब कतरने में चला जाता है, बेचारे रोते रहते हैं। तो वो ऐसा कर्म करते हैं, तो ये चोरी का कर्म है, दूसरों को धोखा देने का कर्म है, ये पाप कर्म है, इसका फल दंड होगा, अगर दुख पाना होगा, जितने व्यसनों में आप लगते हैं उससे दंड होगा। तो व्यसनों में लगाने वाले व्यसनों में लगाते हैं, जैसे चिलम पीते हैं, तम्बाकू पीते हैं, हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो ये क्रियों को भी में लगा देते हैं, जैसे वो पाप में लगाते हैं, ऐसे कई आदमी सत्संग में लगा देते हैं, दान पुण्य में लगा देते हैं, धर्म करने में लगा देते हैं, शास्त्रों के विचार में लगा देते हैं, नाम जप में, कीर्तन में लगा देते हैं, सत्संग में लगा देते हैं, तो वे बहुत बड़े पुण्य के भागी होते हैं। पुण्य कर्मों में बहुत विलक्षण पुण्य होता है, इन पुण्य से आगाड़ी शुभ कर्म का फल अच्छा होगा, और अभी वर्तमान में हृदय में शांति पहुंचेगी, सत्संग के द्वारा बहुत विशेष लाभ होता है, वो सत्संग सद्भावों के प्रचार में पुस्तकें भी काम करती हैं और सत्संग का समारोह भी काम करता है। जैसे अभी ये सत्संग का समारोह हो रहा है, कितने आदमियों को शांति मिलती है, विलक्षण बात है, और कितने आदमी भगवान में लग जाते हैं। मेरे परिचित ऐसे कई हुए हैं जो बिल्कुल सत्संग नहीं जानते, वे सत्संग में लग गए, भजन ध्यान में लग गए, कीर्तन में लग गए, रामायण कविता आदि पाठ करने लग गए, दुनिया का हित करने में लग गए, उपकार करने में लग गए, तो कितना उनका जीवन शुद्ध निर्मल बन जाता है। तो वर्तमान में जीवन निर्मल बनाने के लिए सत्संगति है, सत्शास्त्र है, ऐसा बड़ा भारी काम का होता है, तो सत्साथ होता है और सद्विचार होता है और सत्संगति होती है, ये तीनों ही नया अच्छा निर्माण करते हैं। पुराने कर्मों के फल के कारण बीमारी आ सकती है, घाटा लग सकता है, घर में कोई मर सकता है, ऐसे अनिष्ट फल होते हैं, ये पुराने कर्मों का फल है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, उनका बेटा मर गया, उनके धन चला गया, बीमारी आ गई, तो लोग कहते हैं काम तो अच्छा करता है पर बीमारी आ गई तो अच्छे काम का फल है कि जो बीमारी आ जाए मर जाए, ये बिल्कुल गलती की बात है। अच्छे कर्मों का फल अगाड़ी मिलेगा, खेती करने का फल खेत पकेगा तब मिलेगा। पुराना अनाज किसी के पड़ा है, खेती नहीं करता है, वो तो मौज रोटी खाता है, और खेती नहीं करता है, पुराना कर्म नहीं है तो रोटी की बड़ी तंगी है, खेती तो करता है जो खेत कर रहा है और घर में रोटी ही नहीं है, अबे खेत फलेगा जब देखना। इस तरह से लोग समझ नहीं सकते हैं, कहते वो भजन ध्यान करते हैं, जप करते हैं, धर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, इनका बेटा मर गया, इनको बीमारी आ गई, इसलिए निंदा हो गई, इसे घाटा लग गया, तो ये पुराने कर्मों का फल है। अभी कर्म है, इनका फल अभी नहीं होता है। हरेक बीज होता है, बीज बोया जाता है, वो पनप करके फिर फल देता है। कई बीज जल्दी फल देते हैं, कई देरी से देते हैं, खेती करते हैं वो 3-4-5 महीनों के भीतर भीतर समाप्त हो जाता है, और नारियल आदि का फल तो वर्षों तक वो वृक्ष रहता है, पीछे फल शुरू होता है। तो सब बीज समान काल में फल नहीं देते हैं, ऐसे ही समान कर्म है, वो कर्म करते समय फल नहीं देते हैं, और कई कई कर्म जल्दी फल देते हैं। किसी ने डाका डाला, किसी की हत्या कर ली तो उसको फांसी की सजा हो जाती है, इसी जन्म में किया हुआ पाप इसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो ऐसे कर्मों का फल अपने को भोगना पड़ता है, उन कर्मों के फल भोगने में भी एक बात है, देखो याद रह जाएगा तो फिर कहेगा ये, तो संचित और प्रारब्ध कर्म है, उन संचित और प्रारब्ध के अनुसार हमारे को सुख दुखदायी परिस्थिति आती है। तो अभी भजन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, ये पुराने संस्कार भी होते हैं और नए कर्म होते हैं। ये पुराने संस्कार किसके होते हैं, तो ये होते हैं संचित कर्म के। प्रारब्ध कर्म का तो फल होता है, मानो हर एक काम करते हैं उससे दो चीज पैदा होती है, थोड़ा ध्यान दें। जैसे कोई व्यापार करता है तो व्यापार में नफा और नुकसान दोनों होते हैं, और एक व्यापार की कड़ा सीखते हैं, तो कड़ा सीखते हैं वो तो नया काम हो ही जाता है, परंतु नफा और नुकसान ये अपने हाथ की बात नहीं है। जैसे हम काम करते हैं नहीं तो उसमें काम करने की शक्ति आती है, तो व्यापार करने की विद्या आती है। ऐसे ही बुरा कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, चोरी करने की विद्या आती है, हर एक आदमी चोरी नहीं कर सकता है, इसमें विद्या होती है। इनकम टैक्स की चोरी करने में कितनी चतुराई करनी पड़ती है, या आपसे पूछानी नहीं है, तो वो विद्या आती है छिपाने की, वो तो नहीं है, और उसमें नफा नुकसान है वो पुराना है। तो काम करने से एक विद्या आती है, ऐसे भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो सत्संग करने की एक विद्या है, सच बोलना है इसकी एक विद्या है, सत्संग करने से इसका ज्ञान होता है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, व्यवहार करना हर एक आदमी को आता नहीं है ठीक तरह से, इस वास्ते वो गड़बड़ी करता है, और ठीक सीख लेता तो अच्छा बढ़ता, व्यवहार करता है तो व्यवहार करता है ये सीखना होता है। व्यापार करते हैं, बही खाता हुआ काम करते हैं, तो बही खाता हुआ काम तो एक काम होता है, एक वो सीखना हो जाता है, तो काम तो मिले न मिले परंतु सीखने की विद्या तो आपके हासिल हो ही जाती है। अच्छा काम करने की आदत है, अच्छा काम की विद्या आ जाती है, तो एक तो विद्या आती है और एक उसका फल होता है। फल भी तात्कालिक होता है और परिणाम में होता है, दो तरह का फल होता है। जैसे भोजन किया तो तात्कालिक तृप्ति होती है, प्यास लगी है जल पी लेने से जल पी कर उसे तृप्ति तात्कालिक होती है, और भोजन वो भी अन्यायपूर्वक दूसरों का लूट करके और छीन करके और अन्यायपूर्वक किया है, अथवा उसमें मछली अंडा आदि अशुद्ध चीजों को किया है, तो अभी तृप्ति तो तत्काल तो हो जाएगी, परंतु उसका परिणाम बड़ा भयंकर निकलेगा, नरकों में भोगना पड़ेगा, तो उसका फल अगर निकलता है, ये तात्कालिक फल तो हो जाता है जल्दी, तो इसमें तृप्ति होने में कोई बाधा नहीं लगेगी, परंतु परिणाम फल उसका बड़ा भारी भयंकर होगा। ऐसे हरेक कर्म का तात्कालिक फल होता है और परिणाम में फल होता है। तो फले शक्तो निबद्धते, फल में आसक्ति कर से लोग बंध जाता है। गीता ने कहा तुम शुभ काम करो, अशुभ काम करो मत। जो पाप का कर्म है वो मत करो, खाने में पीने में व्यापार में रहन सहन में। तुम न्याय युक्त काम करो, धर्म युक्त काम करो, तो इसमें शांति मिलेगी। ये तात्कालिक फल है। अन्याय करने को अशांति मिलेगी। चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, सेल टैक्स की चोरी करते हैं, तो इससे भय पैदा होता है। तो पाप करने से भय पे नया फल हुआ और तो दंड होगा वो आगे और होगा, अब इतने से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से चोरी करने का बड़ा, अन्याय करने का फल बड़ा भयंकर होता है। इस वास्ते पाप कर से डरते रहना, डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, अगर दूसरों का अपकार किया है तो उसका भयंकर फल भोगना पड़ेगा। इस वास्ते शुभ काम करो, अशुभ काम मत करो। शुभ काम क्या होता है कि जो शास्त्र ने आज्ञा दी है, तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थित हो। तो भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं कि जो आसुरी संपत्ति वाले हैं, जो भोगों में लगे हुए हैं, केवल प्राण पोषण परायण लगे हुए हैं, उन पर पुरुषों में ये ज्ञान नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो करना क्या चाहिए क्या नहीं ये ज्ञान होता ही नहीं उनको। प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना विद्रासुरा आसुर जन जानते ही नहीं, वो तो खाना जानते हैं। जैसे पशु है, अब ये खेत किसका है, कभी ने कहा है भैंस का जाने खेत सगा को, भैंस को क्या पता मैं सगा का खेत है, ये हमने बेटी दी है इस घर का हमने भोजन नहीं करना है, क्या भैंस ये जानती है कि हमारे मालिक की बेटी दी गई है इसका खेत का काम है, वो क्या जाने बेचारी। ऐसे बहुत से लोग जो जानते ही नहीं कि ये पाप है पुण्य क्या है, जिसमें आसुरी संपत्ति होते हैं। आसुरी संपत्ति उनकी होती है केवल पेट पालना है, बढ़िया बढ़िया भोजन करना, इतना ही काम है। इसमें पाप होता है कोई ख्याल ही नहीं है। अगर ख्याल हो तो मांस मदिरा अंडा मछली आदि नहीं खाएंगे वो। उनको ज्ञान होगा कि ये जो दूसरे प्राणियों की हत्या होती है, मछलियों की हत्या होती है, अंडों की हत्या होती है, मांस की हत्या होती है दूसरे जीवों की, इसका फल भोगना पड़ेगा। ऐसा जानते नहीं जानने के कारण पाप करते हैं और फल भयंकर फल भोगते हैं। तो यहाँ भी फल हो जाता है, अगर ही फल भयंकर होगा इसमें संदेह नहीं है। ऐसे एक बात और याद आ गई, ऐसे पाप बढ़ जाए तो पाप का प्रायश्चित भी होता है, मन पाप दुख जाता है। वे प्रायश्चित दो तरह के होते हैं, एक जाना कि अब चोरी करी थी क्या फल है, वो पाप फल अभी प्रायश्चित करते पाप कट जाता है। एक सामान्य प्रयास होता है, जैसे गंगा स्नान है, भगवान नाम का जप है, सत्संगति है, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय है, ऐसे शुभ कर्म करते हैं, इससे सब तरह के पापों का नाश होता है। हमने जाना है उन पापों का भी, अनजानपने में किए हुए पापों का भी नाश होता है। भजन ध्यान करने से स्वतः शांति मिलती है, पापों का नाश होता है। और फल भोगने से भी पापों का नाश होता है। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि बीमारी आती है वो किसी पाप के फल रूप से आती है। तो बीमारी आ जाने पर जब ठीक होता है तो उसका अंतकरण निर्मल हो जाता है। इसकी परीक्षा है कि भगवत संबंधी बातों में गदगद हो जाता है, प्रेम लग जाता है सत्संग में, सत्शास्त्र में, भजन ध्यान करने में, तो वो पुराने पाप नष्ट हुए बीमारी भोगने से, वो बीमारी पाप नष्ट होने से अंतकरण शुद्ध होता है। ये प्रत्यक्ष में लाभ होता है शुभ कर्मों का, शुभ फल इसका। तो इस द्वारा से शुभ काम करो, अशुभ काम मत करो, क्योंकि अशुभ काम है वो आपको दंड देगा। इसमें एक बात विलक्षण और है कि शुभ काम करोगे उसमें देवता सहायक होंगे, भगवान सहायक होंगे, धर्म सहायक होगा, सत्शास्त्र सहायक होगा, सत्पुरुष महापुरुष सत्संग भजन ध्यान के तत्व को जानने वाले तत्व के जीवन मुक्त प्रेमी भगवान के भी आपकी सहायता करेंगे, और पाप करने में ये सहायता नहीं करेंगे। पाप करने में कुसंग होगा वो सहायता करता है। जैसे भोगी है, कामी है, हिंसक है, व्यसनी है, बुरे बुरे व्यसन करने वाले हैं, उनके संग से पाप में प्रवृत्ति होती है। तो संग दोनों तरफ ले जाता है, सत्संग भजन तो भगवान की तरफ ले जाता है और कुसंग है वो पापों की तरफ ले जाता है। तो संग अच्छा करना चाहिए। संग सर्वात्मना त्याज्य सचे त्यक तुम न शक्यते सदवी स कर्तव्य सता संगो ही देश जम। सदा शुभ काम करो, शुभ काम करने का फल शुभ होगा। ऐसे संग अच्छा करो, संग पहले करो ही मत, करो तो शुभ कर्म करो। ऐसे संत महात्मा पुरुष है उनकी आज्ञा पालन करो, उनका संग करो, जिसमें सद्बुद्धि पैदा होगी आपका जीवन बदल जाएगा। संग से जीवन बदलता है, पापियों के संग करने से पापी बन जाता है, पुण्यात्मा संतों का संग करने से पुण्यात्मा बन जाता है, उसका स्वभाव सुधर जाता है। एक बात और ध्यान देने की है कि हम जैसा काम करते हैं उसे स्वभाव बनता है। मैंने कहा दो चीज बनती है, एक तो पाप करने से उसका दंड रूपी फल होगा, एक पाप करने की आदत बनेगी। ऐसे शुभ काम करते हैं उसे शुभ काम करने की आदत बनेगी और एक आगड़ी सुखदायी फल होगा। तो आदत बनती है, ये बहुत दामी चीज है। पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, वे तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु आदत बनती है वो आगाड़ी भी बहुत दूर तक चलती है। इस वास्ते आदत अच्छी बननी चाहिए। ये विशेष ध्यान देने की बात कहता हूँ कि आप भजन ध्यान करोगे, दान पुण्य करोगे, उपकार करोगे, सत्संग करोगे तो आपके स्वभाव में अच्छा काम करने की आदत बन जाएगी। ये एक विद्या आ जाएगी जिसमें रुचि सत्संग में रहेगी, शुभ काम में रुचि रहेगी तो शुभ काम करते ही चले जाओगे। जैसे दो आदमी है, ध्यान देकर सुनना, दोनों जमीन पर है, एक तो कोई मकान बनाने के लिए नींव खोदता है और एक कुआं खोदता है। तो खोदने वाला नीचे जाता है पर नींव खोद करके भरने लगता है तो भरते भरते नींव भर जाती है, फिर भी चिंता रहता है, दो तीन चार पांच मंजिल पर वो चला जाता है और जमा करने से। अरे खोदने वाला नीचे दस बीस पचास हाथ सौ हाथ नीचे चला जाता है खोद खोद करके। तो पाप कर्म करने वाला नीचे की तरफ अधोगति में जाता है अपने ही कर्मों से, वो अपने खोदता है, अपने चिंता है, अपने कर्मों से ऊंचा नीचे जाता है। तो ये तो साधारण दृष्टांत है। पाप करने वाला नरकों में जाता है, नीची तरफ जाता है, वो उसकी वृत्तियां भी नीची होती है, भाव भी नीचे होते हैं। वो भजन ध्यान में लगता है तो जल्दी जल्दी उसका काम ठीक नहीं चलता है, भजन ध्यान में उन्नति कम होती है, होती जरूर है परंतु पुराने पापों के कारण से उधर मन कम लगता है। और पुराने शुभ कर्म होते हैं तो उसमें मन सच्चा लगता, अच्छा लगता है, वो बड़ी उन्नति करे, थोड़े दिनों में बड़ा बड़ा संत बन जाता है, वीर त्यागी बन जाता है। ऐसी बात उसमें होती है क्यों, पुराने कर्म उसके शुभ है, वो फल देने वाले होते हैं। तो स्वभाव बनता है, मैंने दो बात कही, हर एक काम करते हैं तो एक तो कार्य होता है, एक उसी आदत, एक विद्या आती है, स्वभाव बनता है। स्वभाव बनता है वो ही मनुष्य को ऊंचा नीचे ले जाता है। ये बात बहुत ध्यान देने की है और समझने की है। आप अपने स्वभाव को शुद्ध बना लोगे, निर्मल बना लोगे तो अगर एक और जोड़ी में जाना पड़ेगा तो भी वह सुख पाओगे। अगर स्वभाव खराब बना लिया तो अच्छी जगह जाओ तो भी दुख पाओगे, आपको सुख नहीं मिलेगा। अरे स्वभाव अच्छा बनाना, पूरा बनाना अभी मौका है। पशु पक्षियों में उतनी सुविधा नहीं है, उनमें भी कुछ है स्वभाव देने की बातें। मनुष्य अच्छे होते तो उनको भी शुभ स्वभाव बना लेते, परंतु मनुष्य जन्म में इसकी प्रधानता है। आप अच्छा स्वभाव बनाओगे तो जिस स्वभाव जहां जिस समाज में जाओ अच्छा काम करोगे। जिनके मन में सेवा करने की है और सेवा करने की आदत बना ली है तो वे जाते तो जहाँ जाएंगे वहां सेवा करेंगे। चलते चलते थक जाते हैं, शाम को कहीं चट्टी में जाकर ठहरे तो बेचारे कई ऐसे बूढ़े और थके हुए आदमी होते हैं जो गांठड़ी मोटी सही थी बैठ जाते हैं, वो थक गए। और कई सेवा करने वाले हुए हैं, सब सब करके कहीं से लकड़ी लाए, कहीं से सामान लाए, कहीं से कोई चीज लाए, बर्तन लाए, चूल्हा चेताया, साग रोटी सब बनाया, दाल रोटी बना दिया, अब कहते आओ भोजन करो। तो चाहे थके हुए भोजन कर देते हैं, तो वे साथ में चलते भी हैं या सेवा के भाग होने से वह सामग्री जुटा देते हैं। तो तीर्थों का फल तो सबको होता है, मन तीर्थवासियों के भोजन का प्रबंध करने वालों को बहुत विशेष फल होता है, ऐसे सत्संग करने वालों को बहुत फल होता है। और सत्संग का आयोजन करते हैं और सत्संग में रक्षा करते हैं, कोई विघ्न न हो जाए, ऐसे बैठाने की, रखने की, सबको जल पिलाने की, इनको भोजन देने की, भक्त पर वस्त्र जुटा देने की जो व्यवस्था करते हैं, उनको बहुत विशेष फल होता है। सत्संग करने वालों को फल तो ज्यादा होता है, पर उस स्थल में से जो जितनी सेवा करते हैं उनका कुछ कट जाता है। वो सेवा नहीं करते हैं, पर सेवा भजन ध्यान करने वालों की सेवा करते हैं, वो सेवा का फल होता है। तो आपको अगर एक रुपया का फल हुआ तो एक दो पैसा उनका फल मिलता है, तो आप हजार हो तो हजार का हजार पैसा होगा, उनके एक पैसे में भी 99 हो जाएगा, और आपको हजार पैसा मिलेगा तो 10 रुपये आप क्या हो गए, कितनी विलक्षण बात है। तो उसको फल कम नहीं होगा जो व्यवस्था करते हैं, और जो मजदूरी करते हैं वो तो अपनी मजदूरी की बात है, जितनी मेहनत करते हैं उतना फल लेते हैं, परंतु जिन सबकी व्यवस्था करना है, सबका प्रबंध करना है, सबको सुविधा देना है, आराम देना है, ठीक तरह से बैठाने की व्यवस्था करना है, ये करते हैं, ये बहुत बड़े पुण्य के भागी होते हैं। सत्संग आदि का आयोजन करने का पुण्य बहुत ज्यादा होता है इसका, क्योंकि बहुतों को शांति मिलती है। भोजन दान है, उससे अन्नदान को महादान बताया शास्त्रों में, अन्नदानम महादानम, बड़ा दान है, क्योंकि ये प्राण अन्न से प्राण देते हैं, अन्न न मिले तो आदमी मर जाए, तो प्राण दान है, अन्न देना है वो, तो अन्नदान अन्नदानम महादानम, विद्यादानम तथोधिकम, इसे विद्या का दान देना है, उसको कमाने की बात सिखा देनी है, साधारण आदमियों को अपने काम धंधे में लगा देना है, जिसके पास ऐसी ऐसी परिस्थिति आ रही है, आदमी को काम नहीं मिल रहा है। लोग तो कहते हैं आज बेकारी बढ़ गई है, बेकारी नहीं बढ़ी है, बेकार आदमी बढ़ गए, काम करते नहीं किसी क्षेत्र में, शुभ काम अच्छा काम जो अपने जिम्मेवारी का पालन नहीं करते उससे बेकारी है, काम करने की कमी नहीं है, अच्छा काम करे तो उसको बेकारी नहीं होगी, बेकारी इस बात तुम ये काम अपने जिम्मेवारी का काम करते नहीं, ध्यान देकर सुनो ये बात बड़ी काम की है, काम करते नहीं इस बात से बेकारी है, अच्छा काम करे तो उनको काम मिल जाता है, मगर जो जिम्मेवारी वो काम करते ही नहीं। हमने बहुत जगह देखी है ऐसी बातें, कागजों में आ गए कि अमुक से अमुक जगह तक सड़क बन गई, सड़क कागजों में सड़क बन गई, वहां देखा तो थोड़ी सी रेती इकट्ठी करी हुई है, सड़क का नाम निशान नहीं है, क्योंकि वो पैसा तो ले लेते हैं, कुछ तो ठेकेदार खा जाते हैं, कुबे खा जाते हैं, दिन में सोते रहते हैं, नाम लिखा देते हैं, पैसे ले जाते हैं, सड़क का नाम निशान ही नहीं, थोड़ा बहुत रेता किसी जगह चक्रिया हुआ है, ये मेरे देखी हुई बातें हैं। तो क्या काम करते नहीं, ऐसे हरेक समय में काम है, हरेक में भी साधु होकर साधुपना का काम नहीं करते, गृहस्थपना गृहस्थ का काम नहीं करते, बहनों माताओं अपने लुगाओं का काम करने वालों का काम नहीं करते, भाई लोग गृहस्थ में रहते काम नहीं करते, बेकारी में समय बर्बाद करते हैं, इसी से बेकारी बढ़ती, फिर दरिद्र बढ़ेगी, काम करते नहीं उसमें दरिद्र बढ़ेगी। और काम करो ये जो व्यवस्था करते हैं कि ज्यादा काम मत करो, ये देश को दरिद्र बनाते हैं, काम करने में नहीं खर्चा कम करो ये तो ठीक है, परंतु काम कम करो ये बात ठीक नहीं है, काम तो करना चाहिए, जितनी मर्जी हो ज्यादा जितना कर सको सुगमता से इतना काम करो, जिससे आपका देश आजाद होगा, देश धनी होगा। खर्चा तो कम ज्यादा करो, सजावट ज्यादा करो, सब कुछ खर्चा ज्यादा करो, कमाओ नहीं तो क्या होगा, दरिद्री होगा, देश दरिद्र हो जाएगा। तो काम धंधा अपने अपने जिम्मेवारी का ठीक तरह करो, वो ठीक तरह करने से ही देश अच्छा हो जाएगा और उद्देश्य भी अच्छा हो जाएगा आपका, आपके परलोक भी सुधरेगा, आपकी आदत सुधर जाएगी, जहां जाओ वहां भी आदत काम देगी, स्वरूप अपना स्वभाव बना हुआ है वो सब जगह सुख देगा, जिस समुदाय में जाएगा उसी में ठीक होगा। आपके घरों के लड़का लड़की है उनका स्वभाव अच्छा बनाओगे तो वे उम्र भर सुख पाएंगे, विद्या पढ़ेंगे तो उम्र भर काम देगी। जैसे हम लोग बच्चे थे तो खेलने का बड़ा शौक था, मेरे तो खुद के खेलने की बड़ी रुचि रहती थी, विद्या पढ़ना इतनी रुचि नहीं रहती थी, खेलने की रुचि ज्यादा रहती थी, मेरे को याद है। तो खेलने के खेला जो आज क्या है, उसका असल क्या हुआ, आज क्या मिला, कुछ नहीं। अगर उसने विद्या अध्ययन कर लिया तो आज भी वो विद्या काम देती है, मेरे भी काम देती है, आपके भी काम देती है, सबका भी हित होता है। तो पढ़ाई करने से लाभ होता है, पर बचपन में पढ़ाई बुरी लगती है, खेल अच्छा लगता है, ऐसा हर एक को होता है। कई कई लड़के होते हैं जिन्हें पढ़ने की रुचि ज्यादा होती है, मेरी रुचि कम, परंतु इतनी बात थी गुरुजन कहते पढ़ो तो फिर उनका कहना करना, उसके पढ़ने में तत्परता, पढ़ने में लग जाना, ये मेरा स्वभाव था। स्वतः अगर पूछे तो खेल कूद अच्छा लगता था, पर लोग कहते हैं पढ़ो तो फिर गुरुजनों की आज्ञा पालन करने में मेरी जहाँ थोड़ा तत्परता थी, स्वभाव था, मेरी आदत थी, कह दिया कि इतना पढ़ो तो पढ़ते फिर, परंतु स्वतः आदत नहीं थी। उन्होंने पढ़ा दिया तो कितना काम कर दिया, इतनी कृपा कर दी, मैं तो आश्चर्य करता हूँ, उनका ऋण उतार नहीं सकते। जैसे माँ है बच्चे का पालन करती है, उस माँ का बदला कोई भी प्राणी उतार सकता ही नहीं। कितना कष्ट देती है माँ, और लड़के माँ की सेवा नहीं करते, बड़े हो जाते हैं तो स्त्री के वशीभूत हो जाते, माँ का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। मैंने ऐसे घरों में बातें सुनी है कि माँ जी को तो काशी भेज दो, ये भजन करेंगे वहाँ, वहाँ प्रबंध कर दो। स्त्री ये कहती है तो पुरुष कहते हैं हाँ माँ जी आप तो तीर्थों में चले जाओ, बूढ़ा हो गया, भजन करो। अरे भजन के नहीं, आप तो होगी माँ जी की स्वाति नहीं, इस बात को भेजते हैं यहाँ से, बड़े काला दिन है ये, नहीं तो बड़े बूढ़ों की सेवा करो। युधिष्ठिर महाराज के यहाँ धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र की स्त्री गांधारी ये रहते थे, तो महाराज कितनी सेवा करते थे युधिष्ठिर, रोजाना सुबह शाम जाकर के नमस्कार करते और सब तरह का प्रबंध किया उनके रहने का। भीमसेन तो कड़ी तर्क मारता था, बुरी बात सुना भी देता था कि ये काम कैसे करो, तुम्हारे बेटे का राज थोड़ा ही है, ऐसा भीमसेन और युधिष्ठिर महाराज तो महाराज ताऊ ताई लगते थे, बड़े बाप बड़ी माँ थी है, बड़ी माँ कहते थे और चरणा में नमस्कार करते और खाने पीने का रहने का खूब प्रबंध कर दिया था। तो इस तरह से मैतों की सेवा करने से उनका यश होता है। आज भी युधिष्ठिर का राज्य आप और हम लोगों के हृदय में राज्य है, उसका आदर करते हैं। दुर्योधन का राज्य है क्या? दुर्योधन महाराज बैर करता था, विरोध रखता था, माँ का कण नहीं मानता था। माँ गांधारी, अरे माँ से बढ़कर संसार में कौन है? वो कहती, वो जाकर कहता माँ मेरे को आशीर्वाद दे दे जो मेरी विजय हो जाए। तो माँ कहती, माँ जन्म देने वाली माँ, कि बेटा आशीर्वाद तो कैसे दूं, तेरा काम ठीक नहीं है, आशीर्वाद क्या दूं, विजय तो धर्म की होगी। गांधारी ने आशीर्वाद नहीं दिया कि तेरी जय हो जाए, क्योंकि वो काम अच्छा नहीं करता था, तो माँ को भी राजी नहीं कर सका। कितनी आश्चर्य दुख की बात है, माँ को राजी नहीं कर सका। माँ तो राजी हो जाए, माँ के हाथ में भोजन कर दो, माँ राजी हो जाए। माँ जब सिर पर हाथ फेर दे, थोड़ा पीठ में हाथ फेर दे और जी मार दे, राजी हो जाए, खुश हो जाए। कितनी एक राजी लेने की कितनी सरल बात है, कितनी सीधी, हमारे को तो माल मिले, अरे माँ राजी हो जाए, उस माँ को राजी नहीं कर सका। युधिष्ठिर महाराज राजी करते थे, तो आज युधिष्ठिर का नाम कितना है, शास्त्र लिखा धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने न, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, क्योंकि धर्मात्मा थे, धर्म का पालन करते थे। माता कुंती का वचन एक एक पालन करते थे, जो वचन निकल गया कुंती के मुंह से उसका वैसे ही करते थे, भूल से निकला हुआ वचन। एक दिन स्वयंवर में द्रौपदी को जीत करके ले गए, उसमें ब्राह्मण बने हुए थे, भारतीय कथा आप जानते ही हैं, नहीं है तो थोड़ी सी कह देता हूं। इनको जब लाखाग्रह में जला दिए गए थे ना, लाख का ग्रह बनाया, उसमें इनको बालने की जला देने की योजना बनाई थी। ये सब शकुनी कहता था, दुर्योधन दुशासन ये करते थे, कर्ण भी उनके साथ में था, पर कर्ण ऐसे में सम्मति नहीं देता। कर्ण कहा कि राज्य लेना तो युद्ध करके लड़ा कर लो, मर जाए तो मर जाए, राज्य ले लेंगे, ये न्याय युद्ध काम करो, तुम पाप मत करो। कर्ण सम्मति नहीं देता, पर दुर्योधन के वचन में ऐसा आबद्ध था, जो दुर्योधन करे वो करना। दुर्योधन मित्रता, उस मित्रता को निभाया कर्ण ने, मर गया पर मित्रता को निभाया। तो कर्ण बड़ा श्रेष्ठ पुरुष था, पर ये चंडाल चौकड़ी थी चार, दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण इन्हें विचार किया कि लाखा घर पे जलाना है, तो लाख का घर बनाया। एक बारनावतपुर नगर था, उन बारनावतपुर में मेला लगेगा, संपूर्ण राज्य में डुबकी पिटा दी कि बारनावत नगर में वहां पर सब मेला लगेगा। और ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, कोई खरीदने वाला हो, चीज वस्तु कोई खरीदने वाला हो, कोई बिक्री करने वाला हो, तो भी व्यापारी भी वहां जावे, खरीदने वाले जावे, सब चीजों का प्रबंध होगा। तो उसमें भाई अपने राज्य की तरफ से कोई जावे जो मेले का प्रबंध करे। तो दुर्योधन आदि तो समझे हुए थे, तो वे कोई बोले नहीं। राजा ने प्रश्न रखा कि द्वारनावत अपने राज की तरफ से मेला का प्रबंध करने के लिए कौन जाएगा। तब तो जो बोले नहीं, तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि महाराज ये आ गया हो तो हम चले जाओ। हाँ बेटा तुम जाओ। दुर्योधन महाराज धृतराष्ट्र ने कह दिया, तो वो चारों भाइयों के सहित माँ के सहित वहां द्वारनावत पर गए। तो द्वारनावत में मकान बनाए बहुत बढ़िया, कि राज के आदमी आएंगे उनके लिए ये मकान बनाएगा, उस मकान में ठहरेंगे और मेला का सब प्रबंध करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज उसमें ठहरे। विदुर जी महाराज थे बड़े नीति के जानकार, उनको पता लगा कि ये लाखा गृह में जलाने के लिए जा रहे हैं। लाख लाख दे दी और घी तेल आदि लाख ये सेचन करके, जिसमें आग लगते ही बारूद और जिसमें जल्दी भड़क उठे और मर जाए इसमें रहने वाले जल्दी, ऐसा सब कहा था। पुरुष नाम का वहां पर एक दरबार रहता था, एक दरवाजा था, उस पर दरबार रहता पुरोचन। उसको कहा हुआ कि अमुक दिन लाग लगाड़ी लाए और ये जल जाए मर जाएंगे, ठीक हो जाएगा काम। तो वो दिन आ रहा था, उनने महाराज विदुर जी ने उनको वृत भाषा में युधिष्ठिर को समझाया, कि साथ में दुर्योधन के आदमी और सब रहते थे गुप्तचर, तो उनको मिले से भाषा दूसरे आदमी जानते नहीं थे, विदुर जी जानते नहीं, ऋषि जानते थे। उसमें जाते हुए समझाया कि सावधान रहना। फिर वहां पर एक पिंजरे में चूहा भेजा, पिंजरे में वो चूहा का युधिष्ठिर भरो दे देना, युधिष्ठिर भरो चूहा दे दिया। चूहे देने का तात्पर्य क्या, कि वैसे आग लगे चाहे जला जा, चूहा आग में बच जाता है, क्योंकि वो बिल खोद करके भीतर चला जाता है, आग ऊपर ले जाती है। तो संकेत किया तुम ऐसे बीच में बिल बना लो जिसमें बच जाओगे। तो संदेह कर दिया, बात भी कह दी। तो वहां मजूरे लगा दिए महाराज विदुर जी ने, तो वो मजूरे खोद दे सिर्फ करके, जब रात हो जाती कोई नहीं देखता तो वो वहां खोद दे, नीचे खोद करके उसे बाहर जावे से दरवाजा निकाल दिया, भीत में जाने की सुरंग बना दी, उसमें उसके ऊपर रख दिया पत्थर और वो नगर बनाया हुआ। तो नगर बनाया, पता लग गया, तो पांचों भाइयों को पता कर दिया। कुंती माता थी, पांच भाई थे, इनको पता लग गया। तो पहले ही वहां से चले, तो निकल करके सबको कहा, भीमसेन ने कहा आप चलो, तो उनको निकाल दिए और भीमसेन गया ऊपर जाकर चारों तरफ आग लगा दी। और दरवाजा था, पुरुषन सोता हुआ था, दरवाजे का लगा दिया ताला, और वो ऊपर कूद के नीचे पड़ा धड़ाम से और जाकर के गुफा में और पत्थर ऊपर दे लिया अपना, पड़ गया साथ ही। डाक्रिया करनी नहीं पड़ी, कर गई हो गई, पुरुषन बल गया, बल गया। अब ये बात हुई कि आग लगी, आग लग गई, बल गए। भगवान ने वहां उनका तीजा कर दिया, द्वादशाई कर दिया, नारायण बलि कर दी, कि पांचों भाई मर गए, माँ भी मर गई, ये काम ठीक हो गया, राजी हो गए। ये उस सुरंग में होकर निकल गए, वे चले गए महाराज अगाड़ी जंगल में जाकर निकले। तो वहां से चलते तो रात थी, अब रात कैसे जावे, और चलने में थक गई, माँ की अवस्था भी अलबत्ता ज्यादा ही थी कि भाई थकावट हो गई। युधिष्ठिर आदि गई तो भीमसेन ने कहा माँ को तो बैठा दिया ऊपर नश के ऊपर, वहां बैठा दिया, और दो भाइयों को यहाँ बैठा दिया, दो भाइयों को ले लिया गोदी में, ऐसे लेकर भीमसेन चला। जो आगे चलते जाते रात्रि में ठहरे, कि भाई प्यास लग गई, इतने रास्ते चले उसे प्यास लग गई, तो जल लाने के लिए प्रबंध करो। तो भीमसेन ने उनको कहा आप ठहरो, तो उनको आ गई नींद। भीमसेन जल लेकर के आया, जल लेकर आया तो नींद आई हुई थी, और नींद में सब जगह जगह जल पिलाया, जगह आराम किया, और फिर वहां से चले। ऐसी बड़ी कथा है उनकी। वहां हिडिंबा, एक हिडिंबासुर राक्षस था, उसने देखा कि मनुष्यों की सुगंधी आ रही है, कोई मनुष्य लाओ खाएंगे हम, तो ऐसा कहा तो विलंबास राक्षस की लड़की वो उसकी बहन थी एडमा की, वो गई उसने देखा और सब कुछ देखा, बात हुआ पीछे भीमसेन पर मोहित हो गई, ऐसा हुआ। तो वो चलते चलते फिर एक चक्रा नगरी में पहुंचे, उसमें रहे कुछ दिन, गए तो द्रौपदी के स्वयंवर में सब गए थे ये, उसमें भी द्रौपदी का स्वयंवर होगा तो कृष्ण भगवान भी आए थे, बलदेव जी भी आए थे और ये पांडव भी आए थे, कौरव भी सब आए थे। पर ये पांडव क्या किया, पांडव ब्राह्मण का रूप धार करके रहे थे, तो एक ब्राह्मणी माँ है, पांच बेटा है ब्राह्मणी के साथ, इस तरह से वो रहते थे। तो भिक्षा मांगते थे, भिक्षा ला करके अपना निर्वाह करते थे गुप्त रीति से, क्यों कौरवों की दृष्टि में तो मर चुके, उनका दान नारायण बलि कर दिया, मधुरी कर दिया सभी, ये जीते थे। तो ये भी पहुंच गए वहां, सुना के द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है तो ये भी वहां पहुंच गए। तो वहां पर एक था मत्स्य बेधन, ऊपर मछली का एक बड़ा चित्र रखा, वो मछली बनावटी, उसके नीचे एक चक्र बनता है, चक्र में एक छेद है, नीचे तेल का कड़ा रखा हुआ है, उसके नीचे की तरफ देखे और वो मछली आ जाए तो मछली को बेधन करे, तो वो चक्र फिरता था जिसमें थोड़ा सा छेद एक, तो वो छेद जब मछली के सामने आवे उस समय बाण मारे तो उसे लग जाए तो मछली बेधन हो जाए, मछली बेधन करे वो द्रौपदी का स्वयंवर करे, द्रौपदी उसको भरेगी। ऐसा किया तो उसमें बहुत रहा, लोग धनुष को चढ़ा नहीं सके, जैसे सीता जी के स्वयंवर में धनुष जिनको चढ़ा नहीं सके, चढ़ाई भी नहीं सके, कर्ण ने चढ़ा दिया कर्ण आया तो धनुष चढ़ा दिया, चढ़ा कर वो देखने लगा तो द्रौपदी वहां बोल गई, कृष्ण भगवान वो बैठे थे, उन्होंने शयन कर दी द्रौपदी को। तो द्रौपदी ने कहा कि दास पुत्र है, मैं दास को स्वीकार नहीं करूं, मैं भरूंगा नहीं, मैं निवेदन करेगा तो ही, मैं तो असली क्षत्रिय भरूंगी, दास को मैं नहीं भरूंगी। तो ये बहुत दुख हुआ कर्ण को, तो फिर वो तो छोड़ दिया, फिर कोई नहीं वेदन कर सका। तब अर्जुन उठा वो ब्राह्मणों की पंक्ति में से, लोग ये ब्राह्मण क्या करेगा, बड़े बड़े राजपूत क्षत्रिय लोग नहीं वेदन कर सके, ये ब्राह्मण क्या करेगा, लोग कहते भाई ब्राह्मणों की बात अलग है, समुद्र पी गए ब्राह्मण तो, ब्राह्मण बड़े बड़े काम करते हैं, ये तो अतुल राज है, ब्राह्मण तो सब कुछ कर सकते हैं। वो ब्राह्मण विश्वास उसने चढ़ाया धनुष तो भगवान पहचान गए, देव जी पहचान गए, जिन लोग पहचान नहीं ब्राह्मण होगा कोई कौन नहीं करता है वो तो, क्योंकि मन में तो सबके मर चुके, वो पांडव मर ही चुके थे। तो अर्जुन ने वो मत्स्य वेदन किया, ऐसा वेदन किया जो वो सिर्फ पड़ा नीचे, नीचे देखना बाण चलाना यूं, तो अर्जुन बाण में बहुत तेज था, कर्ण भी कम नहीं था, कर्ण तो बाचार बेचारा क्षत्रिय पुत्र नहीं कहलाता, वहां दासी पुत्र, दास पुत्र था, राधा का बेटा था। तो वो बस वेदन के बाद में जब बस वेदन कर दिया तो लड़ाई हुई, लड़ाई करने लगे तो सब उठ गए, ब्राह्मण सब तैयार हो गए, हम लड़ेंगे। भीमसेन अर्जुन का आप बैठो, आपने हम काम कर लेंगे, आप ही ब्राह्मण के, ब्राह्मणों का तुम तिरस्कार करते हो, इनकी लड़ाई करते हो। तब तो चुप किया, फिर लड़ाई में विजय कर ली। फिर ये अपने द्रौपदी को साथ लेकर गए तो बाल कही कि माँ हम भिक्षा लाए हैं, वस्तु लाए हैं। तो माँ ने कह दिया कि बेटा पांचों ले लो, तो पांचों क्या ले, अब तो स्वयं पर भी एक कन्या जीत कर लाए हैं। तो माँ ने कहा बेटा मेरी बात सती कैसे होगी, युधिष्ठिर का हम सती करेंगे, माँ की भूल से बात निकल जाए तो वो भी हम सती करेंगे, हम पांचों ब्याह करेंगे साथ में। बड़े कहा चल मुझे पांचों ब्याह करोगे, द्रौपदी के सामने किया सर हम तो पांचों ब्याह करेंगे। द्रौपदी ने कहा अरे भाई इस पिछले भाई ने तुम्हारे ये बाण भेदा है, युधिष्ठिर महाराज भीमसेन बड़े थे, नकुल देव दक्षा देव छोटे थे, ये बीच का भाई था अर्जुन, इसने भेजा इसके साथ मैं तो अपनी कन्या का ब्याह करूंगा। तो क्या करने ऐसा नहीं हुआ, विवाद हुआ तो व्यास जी महाराज आगे प्रकट हो गए, उन्होंने कहा भाई ऐसा होने वाला है, इसने पहले तपस्या करी थी भगवान शंकर की, शंकर ने कहा वर मांगो, तिनके मेरे वर मिले, मेरे वर मिले, वर पांच बार कहा तो पांच वर मिलेंगे, शंकर ने वरदान देगा पांच पति मिलेगी तुम्हारी, ऐसे गऊ का साफ है गऊ के पीछे सांड जा रहे पांच, तो तुम्हारी पांच पति होंगे। ऐसा साफ मिला था इनको पांच पति होने वाला है, ठीक है। फिर इसका मार्कंडेय पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन में आया है, ये पांचों पांच नहीं थे, एक ही थे, एक ही पांच बने हैं, इस वजह से पांच पांच नहीं थे। ये कथा मार्कंडेय पुराण में आती है विस्तार से, किंजल के पक्षी पक्षी सुनाया ये बातें। तो इस तरह से उनका ब्याह हुआ। तो बात ये कहनी थी कि माँ का वचन ऐसा निकल जाए वो वास्तव में ऐसी बात नहीं है, तो भी माँ की बात टालते नहीं थे, माँ के वचनों में तत्पर रहते थे। तो युधिष्ठिर महाराज तो मातृभक्त होने से महाराज विजय पा गए। अरे युधिष्ठिर अपनी माँ की बात ही नहीं मानता था, माँ आशीर्वाद नहीं देती थी तो आशीर्वाद बिना के मैं तो जाऊंगा युद्ध करूंगा ऐसी बात ही। तो वास्तव माँ बाप की भक्ति करना, माँ का बाबा कहना मानना, बहनों को चाहिए अपने सास है ससुर है उनका आदर करो। तुम सुहाग के मद में बड़ी होती है वो है क्या, वो सास रूपी वृक्ष का फल ही तो आपका सौभाग्य है। तो इस वास्ते सास का आदर करो, बड़े बूढ़ों का आदर करो, सेवा करो, तो उनकी हृदय से आशीर्वाद मिलेगी। माताओं के हृदय में जब बालक पैदा होता है तो उम्मीद होती है कि लड़का हुआ है इसको पालूंगी, इसकी बहू आवेगी मेरी सेवा करेगी, ऐसी आशा रहती बरसों से। और फिर बहू आ जाए दुख देने वाली तो बेचारी बड़ा धक्का लगता है, तो उसका अपराध होता है, तो उनके जीवन में सुख नहीं होगा। जो माँ बाप को सुख नहीं देते हैं, सास ससुर को दुख नहीं देते हैं, उनको दुख भोगना पड़ता है, ये एकदम पक्की बात है। तो युधिष्ठिर महाराज माँ बाप के भक्त थे, उनकी बात भी और बहुत बहुत सी है। तो मैं कर्मों की बात कह रहा था, तो नए कर्म है ये, माँ बाप की आज्ञा पालन करना, धर्म करना, पुण्य करना, न्याय में चलना, ये नए कर्म है। तो नए कर्म अच्छे होते हैं, उससे अगाड़ी उसका नयापना अच्छा ही अच्छा होता है। और भोगों में आसक्त होते हैं, उनकी भोगों के भोगने की और आसक्ति बढ़ती है, फिर अगाड़ी भी भोग जो नहीं मिलती है उसको मनुष्य जो नहीं मिलती, क्योंकि सुख भोगने के लिए वे तत्पर रहते हैं, तो सुख और दुख भोगना पड़ता है। सुख तो मन से भोगते हैं, दुख पराधीन से भोगना पड़ता है। देखो एक मार्मिक बात बतावें, मनुष्य पाप तो करता है मर्जी से और फल भोगता है दूसरे की मर्जी से। जैसे कैद में जाते हैं वो अपराध तो अपनी मर्जी से करते हैं, कैद अपनी मर्जी के बिना भोगते हैं, और मर्जी थोड़ी कैद में भोगने की। ऐसे नर्क बिना भोग बिना इच्छा के भोगना पड़ता है। शुभ काम करते हैं तो करते भी शुभ स्वतंत्रता से और फल भोग भी स्वतंत्रता से भोगते हैं, मौज में रहते हैं, और पाप करते हैं उनको पराधीनता मिलती है, दुख भोगना पड़ता है। इस वास्ते पाप कर्म न करें, शुभ काम करें। तो अब आ जाते हैं कि अपना काम कर्तव्य कर्म है, तो सत्संग भजन ध्यान ये नया कर्म है, ये पुराने कर्मों का फल नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। धन होना न होना, बेटा होना न होना, ये भाग्य की बात है, पर आजकल जो अन्याय करते हैं, बेटा का निरोध करते हैं, ये पाप करते हैं, बड़ा भारी पाप है। तो ये होना करना अपने हाथ की बात नहीं है, क्योंकि शुभ कर्मों का फल है उसको हम लें न लें इसमें हम स्वतंत्र हैं। पाप कर्मों का फल तो जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। अब लड़का होना, धन होना, उनके अच्छा आशयश होना, अपयश होना, ये पुराने कर्मों का फल है, पर पुराने का शुभ फल है उसका त्याग कर सकते हैं। इस बात लड़के का बंद भी कर सकते हैं, लड़का ले भी सकते हैं, धन प्राप्त में लिखा है, पर साधु हो जाए त्याग कर सकते हैं, धन नहीं ले गए आकर दे तो नहीं लेंगे। तो शुभ कर्म का फल है उसके भोगने में न भोगने में, संग्रह करने में न करने में हम स्वतंत्र है, पर पाप का फल होगा वो तो भोगना ही पड़ेगा। आपके घर पर कोई संत आ जाए भिक्षा के लिए, आप भिक्षा दो न दो आपकी मर्जी है, पर डाकू आ जाए कि हम तो देंगे नहीं, वो देंगे हम तो लेंगे, मारपीट और करेंगे लेंगे। तो पाप कर्म तो डाकू की तरह है और पुण्य कर्म संत की तरह है, तो उसको दो मत दो नहीं, परंतु पापी है उसको तो दंड देना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा। तो अशुभ कर्मों का फल बड़ा भयंकर होगा। अब समय होता है इस वास्ते, अब आज छोड़ने कल याद दिलाओ तो ये बात खूब विस्तार से फिर बता रहा आपको। नारायण नारायण नारायण।